नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्लोक 17 से चालू करें ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैः आत्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णं इदमाह प्रथास्यते श्री कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यां ईश्वरं प्रकृतेः परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितां मायाजवनिकाच्छन्नं अज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये एक एक श्लोक पढ़िए कुछ लोग श्लोक से चलो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय
गोविंदाय नमो
नमः
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय
देवकी नंदनाय च
नंद
गोप कुमाराय
गोविंदाय
गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, ब्रह्म तेज ब्रह्मास्त्र से विनिर्मुक्त ही, जो पूर्णतः मुक्त हो चुके थे, आत्मजय ही सह अपने पुत्रों के साथ कृष्णया कृष्णा के साथ द्रौपदी के साथ प्रयाणाभिमुखम द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत, कृष्णम कृष्ण से इदम यह जो कहा जाएगा, आह कहने लगी पृथा कुंती सती परम वैष्णवी। श्री कुंती वाच, श्री कुंती महारानी ने कहना प्रारंभ किया, नमस्ते, मैं नमस्कार करती हूं पुरुषम आद्यम, क्योंकि आप आदि पुरुष हैं, ईश्वरम प्रकृति के नियंता है, प्रकृति परम और प्रकृति से परे है, अलक्ष्यम फिर भी आपको लोग समझ नहीं पाते हैं, सर्वभूतानां समस्त प्राणियों के अंतः बही भीतर और बाहर अवस्थितम आप अवस्थित हैं, तथापि अलक्ष्यम माया जवनिका छन्न, अपनी योग माया के पर्दे से आप अपने को ढके रहते हैं, अज्ञा मुझ अज्ञा के द्वारा भक्ति योग से अनभिज्ञ मेरे द्वारा आप नहीं समझ में आ सकते हैं, अधोक्षजम क्योंकि आप इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं, अव्ययम आप अपरिच्छिन्न हैं, सभी देश में और सभी काल में आप विद्यमान हैं, न लक्ष्य से आप लक्षित नहीं होते हैं, मूढ़ दृशा देहाभिमानी व्यक्ति के द्वारा, नटो जैसे नाचने वाला, नाट्य धरह विविध नृत्य गति प्रस्तुत करते हुए, जथा जैसे श्री भगवान की बुआ जो वास्तव में देवकी के समान महिमामयी है, जिसको श्री वसुदेव जी की सहोदरी बहन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कुंती ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा था। वह एक राजर्षि की पत्नी थी, पांडु महाराज की पत्नी, ऐसे उसका जन्म मथुरा में हुआ था, पर विवाह हुआ हस्तिनापुर में सबसे बड़े राजा के साथ, परंतु राज परिवार में कुछ ऐसा राजनीतिक विवाद चल रहा था हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर कि इसको बार बार संकट झेलना पड़ा। बहुत अल्प समय ही अपने पति के साथ रह पाई, दैव जोग से पांडु महाराज का निधन हो गया और यह बेचारी विधवा हो गई। उसके बाद यह अपने बच्चों की रक्षा में लगी रही और परिवार के लोग ही धृतराष्ट्र और दुर्योधन आदि इनके पुत्रों को मारना चाहते थे। किसी भी तरह से चाहते थे कि पांचों मर जाएं, क्योंकि वास्तव में राज्य के उत्तराधिकारी थे। बहुत इको हो रहा है ना? तो जैसे लक्षा भवन में जलाने का प्रयास करना, भीमसेन को विष देना, फिर राज्य का अपहरण करना जुए के बहाने से, किसी भी तरह से हमेशा दुख में रही कुंती। परंतु किसी भी अवस्था में यह पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण का भक्त थी। अतः श्री भगवान इसकी रक्षा करते रहे और इसके पुत्रों की रक्षा करते रहे सब समय। तो भगवान कृष्ण के द्वारा किए गए उपकार को ये जानती थी और भगवान की महिमा को भी पूरा पूरा जानती है। कुंती को ज्ञान है कि साक्षात भगवान है, परंतु चूंकि भगवान का वह एक परिकर है तो वह भगवान के प्रति अपने माधुर्य संबंध को ही मानती रहती थी। माधुर्य संबंध का मतलब है कृष्ण के साथ जो उसका संबंध है उसी को मानती थी। कृष्ण हमारे भाई के वसुदेव जी के पुत्र हैं और इस कारण से जैसे देवकी स्नेह करती है वैसे वात्सल्य भाव रखती थी कृष्ण के प्रति। कृष्ण के योग क्षेम की चिंता करती थी, उनको आशीर्वाद देती थी सब कुछ। परंतु लगातार ऐश्वर्य हावी हो गया उनके भाव पर। श्री कृष्ण बार बार जब ऐश्वर्य दिखा रहे थे तब कुंती के मन में बात आ गई कि ये तो ईश्वर हैं, साक्षात भगवान हैं और मैं इनको अपना भतीजा मानती हूँ, ये मेरा अपराध। तो इस समय जब भगवान द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत हुए तो भगवान श्री कृष्ण से अपने भावों को छिपा नहीं सके और द्रौपदी के साथ अपने पुत्रों के साथ खड़ी थी रथ के पास। रथ पर सवार कृष्ण द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत थे तो उस समय इदम आह यह कहने लगे। कुंती महारानी अपने भावों को व्यक्त कर रही हैं। जीवन में पहली बार श्री कृष्ण को प्रणाम कर रही हैं। आप जरा विचार कीजिए, किसी दिन वसुदेव जी प्रणाम करने लगे भगवान को, या देवकी प्रणाम करे, या जसोदा जी करे, नंद बाबा, तो कितनी उठपटांग बात। परंतु भगवान का ऐश्वर्य तो नित्य है ही, वो कभी कभी अधिक प्रकट होता है तो परिकरों में, द्वारका के परिकरों में भगवान के प्रति ईश्वर बुद्धि हो ही जाती है। तो प्रणाम करने लगे। कुंती वाच नमस्य पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। त्वा का अर्थ त्वाम, मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। भगवान तो चकित हो गए। ननु कनिष्ठम माम कथम नमस्करोसि। भगवान ने कहा कि बुआ जी, मैं तो कनिष्ठ हूं, उम्र में और संबंध में भी मैं आपसे छोटा हूं। मैं आपके पुत्र जैसा हूं, भाई का पुत्र हूं तो पुत्र ही हुआ, और उम्र में भी छोटा हूं, आप मुझको क्यों प्रणाम कर रही हैं? सिर्फ श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं, ननु कनिष्ठम माम कथम नमस्करोसि, मुझ छोटे को आप क्यों प्रणाम कर रही हैं? भगवान लज्जित हो रहे थे रथ पर बैठकर। तब कुंती महारानी कहते हैं, नहीं कृष्ण, तुम केवल मेरे भाई के पुत्र ही नहीं हो, तुम आदि पुरुष हो। आदि पुरुष तो नारायण है, विष्णु है, भगवान जिन्होंने सबको जन्म दिया है, सबको जो पोष रहे हैं, सबको संयम में रखते हैं, जो ब्रह्मा जी को भी जन्म दिए, शिव जी को जन्म दिए, सब देवताओं को, वो है आदि पुरुष, पहला व्यक्ति। आदि पुरुष का अर्थ पहला नहीं होता, आदि का अर्थ होता है अनादि, जिसके कोई शुरुआत नहीं है, प्रारंभ नहीं है, और उसी से सबका जन्म हुआ है, उसको आदि पुरुष कहते हैं। पर प्रकट लीला में तो भगवान वसुदेव जी से जन्म लिए हैं, तो प्रश्न हो सकता है क्या वसुदेव जी आदि पुरुष हैं जिनसे कृष्ण जन्म लिए? नहीं, वास्तविक बात यह है कि चाहे वसुदेव जी अथवा नंद महाराज या यशोदा या देवकी कोई भी हो, इन सबके कारण कृष्ण है, कृष्ण से ही सबका जन्म हुआ है। जब ब्रह्मा जी का जन्म भगवान से हुआ है तो वसुदेव जी आदि का तो कहना ही क्या। फिर भी अनादि काल से भगवान श्री कृष्ण की यही मान्यता रहती है कि ये मेरे पिता हैं। उनके वात्सल्यमय भक्ति से वे प्रभावित रहते हैं, स्नेह रहता है वसुदेव जी का। आपने पढ़ा होगा भागवत में कि ब्रज से जब कृष्ण मथुरा गए तो वसुदेव जी को ये चिंता हुई कि मेरा बेटा पढ़ा नहीं, ये गाय बकरी चराता रहा, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, तो तुरंत उज्जैन भेज दिए पढ़ने के लिए। ये पिता का वात्सल्य था, जैसे माता पिता व्यग्र रहते हैं कि हमारा बेटा पढ़े, अच्छा बने, भविष्य में इसे कोई दिक्कत ना हो, तो वसुदेव जी के हृदय में वात्सल्य था, तुरंत उज्जैन भेज दिए पढ़ने के लिए। तो इस तरह से योगक्षेम की चिंता कहते हैं इसको। कुंती हमेशा स्नेह करती थी भगवान के प्रति, सब तरह से मानती थी, लेकिन आज वो प्रणाम कर रही थी। तो प्रणाम करने पर जब भगवान ने ऑब्जेक्शन किया तो कहते हैं नहीं नहीं, अगर मान लीजिए कुंती कहे कि, यदि भगवान कहे कि मुझ भतीजे को क्यों प्रणाम कर रही हो, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हो, इस प्रकार की बात क्यों करने लगी, क्या बुआ पागल हो गई है क्या, आज कुछ हो गया क्या, हमको क्यों प्रणाम कर रही है? तो कहती है कि श्री कृष्ण, तुम केवल मेरे भाई के पुत्र ही नहीं हो, तुम आदि पुरुष हो। तो अनादि काल से ही भगवान अपने नित्य सिद्ध परिकरों में कुछ भक्तों में वात्सल्य भाव भरे हैं और उन्हीं को अपना पिता मानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई कहे कि किसी दिन अगर भगवान के मन में आ जाए कि मैं भगवान हूं, किसी का बेटा नहीं हूं, तब क्या होगा भगवान की स्वरूप शक्ति है जिसको योग माया कहते हैं या चीज शक्ति, वही भगवान को इस भावना में बांध करके रखी है कि मैं पुत्र हूं वसुदेव जी का। ऐसा कभी भी समय नहीं आएगा कि ये भावना भगवान की होगी कि मैं पुत्र नहीं हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, और मैं क्यों किसी को प्रणाम करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वे वसुदेव जी के पुत्र ही हैं और रहेंगे, भले वे आदि पुरुष हैं, आदि आद्यम पुरुष हूं, आदि पुरुष, पुरुष का अर्थ होता है पूर्ण। पुरुष शब्द के दो मुख्य अर्थ है, एक तो अर्थ है जो पुरी में शयन करते हैं, पहला तो है जो जगन्नाथपुरी में रहते हैं, वो है पुरुष, सबसे श्रेष्ठ पुरुष है, इसी से उनको पुरुषोत्तम कहते हैं, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। अतोस्मी लोक के वेद च प्रथितः पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम पुरुष पुरुष है। उत्तम पुरुष का अर्थ है सबसे अधिक धनवान, सबसे अधिक सुंदर, विद्वान, और इसके साथ यह भी कि जो मरण और जन्म से शून्य है, उनका कभी जन्म नहीं होता है, कभी मरण नहीं हो सकता है, इसलिए भी उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम है। तो ऐसे जो आदि पुरुष हैं,
वे किसी को प्रणाम करें तो ये अपराध की बात है ना, अगर जो प्रणाम स्वीकार कराता है तो अपराध कर रहा है। तो कुंती महारानी कहते हैं कि आप आदि पुरुष हैं। कैसे कैसे आप हमको आदि पुरुष कह रही हो? तो कुंती महारानी कहते हैं प्रकृति परम, क्योंकि आप प्रकृति से परे हैं और ईश्वरम प्रकृति के नियंता भी हैं। आपका कुछ भी प्राकृत नहीं है, मेटेरियल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह शरीर, उनका वस्त्र, उनकी द्वारिका नगरी या उनसे संबंधित कोई चीज प्रकृति का बनाया हुआ नहीं है। इस संसार में हम लोगों का जो भी है वो प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है। हमारा देह, हमारा मन, बुद्धि और ये सब सामान, खाने पीने का, कपड़ा, जूता, किताब, सब कुछ प्राकृत है, जड़ प्रकृति का रचा हुआ है। लेकिन श्री भगवान का कुछ भी प्राकृत नहीं है, सब चिन्मय है, दिव्य है। तो कुंती महारानी कहती है क्योंकि आप प्रकृति से परे हैं और सब लोग प्रकृति के अधीन हैं, प्रकृति ने जन्म दिया है। किसी शहर में, गांव में कोई भी जीव माता पिता बन जाता है, कोई ठीक नहीं है। आज मनुष्य शरीर मिला है, अगले जन्म में हो सकता है कुत्ता बाप बन जाए, ये कोई ठीक नहीं है। विविध जोनियां मिलती रहती हैं, इस जोनी से उस जोनी में, तो ये सब प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृति जन्म देती है, प्रकृति मार देती है, प्रकृति खाने को देती है और पहनने को देती है, सब कुछ प्राकृत है। ये दुकानों में भरा हुआ सामान कहीं कोई वैकुंठ का नहीं आया है, सब प्रकृति का है, यहाँ का है। लेकिन श्री भगवान का जो धाम है और उनका जो श्री विग्रह शरीर है, उनके परिकर आदि जो कुछ है, सब वैकुंठ जगत के, तो इसलिए उनको प्रकृति है परम, प्रकृति से अतीत कहते हैं, प्रकृति से परे। और परम का अर्थ यह भी होता है नियंता, कंट्रोलर, वे प्रकृति के कंट्रोलर हैं और समस्त जीवों के ईश्वर हैं। ईश्वर का अर्थ होता है नियंता, नियंता का अर्थ है बस में रखने वाला। ये सारा चल अचल जगत और जो कुछ भी है, स्वर्ग पाताल आदि, सब श्री कृष्ण के अधीन है, श्री कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। कुंती महारानी इस रहस्य का उद्घाटन कर रही है। यह भी दूसरे श्लोक में कहती हैं कि मैं अज्ञा हूं और मूढ़ दृक हूं। मूढ़ दृक का अर्थ होता है मैं देहाभिमानी हूं, देह को मैं मानती हूं, इतना अज्ञ मैं हूं। और अज्ञा का अर्थ है भक्ति योग से अनभिज्ञ, मैं तो भक्ति योग भी नहीं जानती हूं कृष्ण, इसीलिए हे प्रभु मैं केवल आपको नमस्कार भर कर सकती हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। अरे सारी बातें तो कह ही दे कि कृष्ण क्या है, फिर भी कहती है मैं आपको नहीं जानती मैं आपको नहीं जानती हूँ, मैं मूढ़ दृक हूँ। जो व्यक्ति शरीर को मैं मानता है उसको गीता में मूढ़ कहा गया है, मूढ़ोयम ना भी जानाती माँ में व्य परमा पे, मूढ़ व्यक्ति मुझको नहीं जानता है। जो देह को ही आत्मा मानता है उसको मूढ़ कहते हैं, मूढ़ मतलब एक नंबर का बेवकूफ, कोई कुछ नहीं जानता है। जो आत्मा को नहीं जानता है इस देह से परे और देह के जन्म मरण को ही आत्मा का जन्म मरण समझ ले, आत्मा का स्वरूप भूल करके और अपने को देह माने, किसी को देह का संबंध ही माने, ये माने वो माने, तो इसको मूढ़ बुद्धि कहते हैं। कुंती महारानी कहते हैं कि मैं एक देहाभिमानिनी जीव हूं और उसमें भी मैं स्त्री हूं। कथम पश्यम हे स्त्री, तीसरे श्लोक में कहते हैं। ऐसे वो स्वीकार करते हैं कि हम स्त्रियों के पास तो ऐसे ही कम बुद्धि है, उसमें भी मैं बहुत अज्ञ हूं, विवेकहीन हूं, तो हे प्रभु मैं आपको कैसे जान सकती हूं? तो बिना जाने प्रणाम कैसे कर रही हो? तो प्रणाम तो कर रहे हैं, तो जान गई है। वास्तविक बात यह है कि जब जल दिया जा रहा था अपने स्वजनों को, तो कुंती महारानी जल में स्नान कर रही थी जल देने के लिए, तो उन्होंने युधिष्ठिर के पास जा करके कुछ कहा। सब लोग देख रहे थे कि युधिष्ठिर के पास उनकी माँ जा रही है और जा करके कानों के पास धीरे से उसने कहा कि बेटा तुम कर्ण को भी जल दो। तो हमारे युधिष्ठिर बिल्कुल चकित हो गए, कर्ण को, कर्ण मेरा कौन संबंधी है कि मैं उसको जल दूं। कुंती ने कहा कि बेटा वो तुम्हारा बड़ा भाई है, बहुत धीरे से बोला, दूसरे लोग ना सुने। महाराज युधिष्ठिर चकित हो गए, वो कैसे तुम्हारे पुत्र है। तो उसने कहा कि बेटा दुर्वासा मुनि के मंत्र का जप करने से भगवान सूर्य के द्वारा मुझे पुत्र प्राप्त हुआ था, लेकिन मैं लोक लज्जा से उसको गंगा जी में बहा दी एक मंजूसे में, तो तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम उसको जल दो। ये सुनकर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि माँ मैं कभी कभी कर्ण के शरीर की बनावट को देखता था, खास करके पैर को, चेहरे को, तो मुझे ऐसे शंका हो रही थी कि ये मेरे माँ जैसी सूरत शकल वाला क्यों है। ऐसा महाभारत में लिखा गया, मैं पैर देखता था, चेहरा देखता था, तो ऐसे में सोचा करता था कि मेरे माँ जैसा इसकी सूरत शकल है, कि तुमने बताया क्यों नहीं। यदि मुझे पता चल गया होता कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है तो मैं कभी भी युद्ध नहीं करता, क्योंकि राज्य तो उसका है। तब कुंती ने समझाया कि नहीं बेटा, राज्य तुम्हारा है क्योंकि तुम अपने पिताजी से जन्म लिए हो, राज्य तो तुम्हारा ही है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज और शोकग्रस्त हो गए, और उस समय उन्होंने गंगा जी का पानी उठा करके साप दिया, केवल कुंती को नहीं, सारी स्त्रियों को, कि आज से स्त्रियों के हृदय में कोई भी गुप्त बात छिप करके नहीं रह सकती है, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। तो उसके बाद ही कुंती महारानी भगवान की स्तुति कर रही हैं, तो उनसे बात छिपी नहीं रह गई कि कृष्ण साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, लगी बकने। कुछ आचार्य ऐसे टीका करते हैं, जब साफ हो गया कि छिपा नहीं सकते तो भी नहीं छिपाई, वो लगी कहने कृष्ण साक्षात परमेश्वर है, भगवान है, स्वयं भगवान है, ये है, वो है, वो। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक जगह पर कहा है कि युधिष्ठिर महाराज का साफ था, तो भगवान के विषय में जो परम रहस्य है उसको भी बताई है तृतीय श्लोक में, और कहते हैं कि मैं भला कैसे जान सकती हूँ, कथम पश्यम ही स्त्रिय, हम स्त्रियां भला आपको कैसे जान सकती हैं, आपको तो विवेकी लोग जानते हैं, परमहंस लोग, अमलात्मा लोग, मुनि लोग जानते हैं, हम स्त्रियां कैसे जान सकते हैं। तो सारी बातें तो उगल दिया कि कृष्ण क्या है, फिर कहती है हम भला कैसे जानेंगे। तो श्री कृष्ण को कह रही हैं कि आप प्रकृति परम, आप प्रकृति से परे हैं, और केवल परे ही नहीं है, प्रकृति के नियंता भी भगवान है। ये माया शक्ति भगवान के अधीन रहती है और सारे जीव माया के अधीन रहते हैं। माया भगवान के अधीन रहती है और माया के अधीन सब लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण माया के अधीन नहीं है। जो लोग यह केवल कहते हैं, इतना स्वीकार करते हैं कि कृष्ण को हम महापुरुष मानते हैं लेकिन भगवान नहीं मानते हैं, तो वे मूढ़ श्रेणी में हैं। उनको कम से कम इतने टाइटल लेना चाहिए कि मैं थर्ड क्लास का बेवकूफ हूँ या फर्स्ट क्लास का बेवकूफ। श्री कृष्ण को ये कहें कि महापुरुष हैं, महामानव हैं, ये भगवान नहीं, इसका मतलब तुम भगवान के बारे में जानते ही नहीं कि भगवान किसको कहते हैं। यदि भगवत्ता के सारे लक्षण कोई जाने तो श्री कृष्ण को सबसे पहले स्वीकार करेगा कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान। ये आज की बात नहीं, श्रीपाद शंकराचार्य ने स्वीकार किया, रामानुजाचार्य ने, निंबार्काचार्य ने, चैतन्य महाप्रभु ने, और उस समय के लीला काल में जितने भी बड़े बड़े लोग थे सबने श्री कृष्ण को स्वीकार किया कि ये साक्षात परमेश्वर है, साक्षात भगवान। लोग ऐसे दिखाते थे हस्तिनापुर आदि में कि देखो जो प्रभु प्रलय काल में क्षीर समुद्र में शयन करते हैं वही यहाँ रथ पर बैठे घूम रहे हैं। ऐसे स्त्रियां बात करती, सबको विदित बात थी कि ये साक्षात भगवान है। एक बार एक व्यक्ति हमसे मिला जो हिंदू नहीं था, दूसरे धर्म का था। उसने कहा कि स्वामी जी, हम वाकई में कृष्ण को तो भगवान स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि इनकी लीलाएं हैं ऐसे, लेकिन और नाम रखकर एक दो अवतार को कहा कि उनको नहीं मान सकते हैं, जो स्त्री के विरह में इतना रोए भगवान राम को कहा। यद्यपि भगवान राम भी स्वयं भगवान ही है, कोई अंतर नहीं, लेकिन वो कह रहा था कि मैं कृष्ण को स्वीकार करता हूँ कि भगवान है, लेकिन राम को नहीं, चूंकि राम भगवान तो मर्यादा का अवतार लिए थे, अपने को छिपा कर रखते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं छिपाते थे, अगर कोई चैलेंज करता था तो प्रकट कर देते थे। महाभारत युद्ध के बाद जब वो द्वारका जा रहे थे तो रास्ते में एक उत्तंक ऋषि मिले, उत्तंक बहुत तेजस्वी ऋषि थे, उन्होंने कहा कि कृष्ण चाहते तो ये रोक दिए होते युद्ध को, लेकिन ये कराए हैं युद्ध। अर्जुन को उकसा करके शुरू दिन ही गीता जयंती के दिन इन्होंने युद्ध कराया, इसलिए मैं इसको साफ दूंगा कृष्ण को, अपने परिवार के लोगों में झगड़ा कराया, ये कराया, मैं साफ दूंगा। जब साफ देने के लिए सामने आए तो भगवान ने उनको अपना विराट रूप दिखाया, उतंक तो छटपटा करके गिर गए, हाय हाय करने लगे, फिर बाद में क्षमा मांगे। ऐसा नहीं था कि भगवान दब करके रहे कि हमको कोई जान न ले कि भगवान है, उन्होंने दिखाया, माँ यशोदा को दो बार अपना रूप दिखाया। एक बार तो दूध पी करके गोद में जम्हाई ले रहे थे और यशोदा से दूध पिला रही थी, जम्हाई से मुख खुला तो उसमें तीनों जगत की सभी चीजों को भगवान ने दिखा दिया। माँ यशोदा तो घबरा गई कि ये क्या देख रहे हैं। और दूसरी बार लाला ने मिट्टी खा लिया तो मिट्टी उगलवा रही थी, निकालो मिट्टी अपने मुख से, उस समय दिखा दिया। तो माँ यशोदा सोचती थी कि ये कोई ग्रह लग रहा है, क्या हो रहा है, किसी भूत का कोई जंजाल है, हमारे बेटा के मुंह में ये सब क्या है। अब बाद में सब तिरोहित हो गए। तो माँ यशोदा पर ऐश्वर्य का कोई प्रभाव नहीं होता है, कितना भी कृष्ण अपना ऐश्वर्य दिखा। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते ही रहते थे, अर्जुन को दिखाए, दुर्योधन को दिखाए, संधिदूत बन करके गए थे, तो छिपी नहीं थी, सारे जगत में बात का प्रचार था कि कृष्ण स्वयं जगदीश्वर हैं, परमात्मा हैं, भगवान हैं, ये छिपी हुई बात नहीं थी। तो कुंती महारानी यहाँ रहस्य उद्घाटन कर रही हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ, क्यों बुआ? क्योंकि आप आदि पुरुष, आप आदि पुरुष हैं, सबके जन्मदाता हैं। कैसे जानती हो आदि पुरुष है? क्यों ऐसा कहते? क्योंकि प्रकृति है परम, आप प्रकृति से परे हैं और ईश्वर हैं, प्रकृति के नियंता भी है। भूतानाम अंतः वही अवस्थित है, आप समस्त जीवों के वस्तुओं के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, सब सर्वत्र विद्यमान है। कृष्ण परमात्मा रूप से समस्त प्राणियों के भीतर हैं, हृदय में और बाहर भी नियंता के रूप में है, सारे जगत को कंट्रोल कर रहे हैं काल के रूप में। तथापि अलक्ष्य, फिर भी आपको जान पाना कठिन है, अलक्ष्य, इतना सब कुछ है फिर भी आपको लोग नहीं जान पाते हैं, हमें इस बात का आश्चर्य है, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, सबके हृदय में हैं, जो प्रकृति के नियंता हैं, जो आदि पुरुष हैं, उनको लोग नहीं जान पाते हैं, आप अलक्ष्य रहते हैं। कुंती महारानी को इस बात का खेद हो रहा है कि ऐसे जो प्रकट ईश्वर हैं इस पृथ्वी पर, हस्तिनापुर में, कुरुक्षेत्र में, वृंदावन में, द्वारका में, इतना इस तरह अनावरण भ्रमण कर रहे हैं साक्षात भगवान, उनको लोग नहीं जान पाते हैं, और मिथ्या कल्पना करके आंख बंद करके अलख निरंजन ऐसे चिल्लाते रहते हैं, कोई धारणा नहीं है। ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला क्या, कोई गिद्ध देख रहा है? ऊपर तो गिद्ध भी उड़ता है ना, ऊपर वाला देख रहा है, तुम्हारे भीतर भी है, बाहर भी है, सर्वत्र अवस्थित है, उसको नहीं जान पाते हैं। तो अलक्षण और कल्पना करते हैं, ध्यान करो, ये करो, वो करो, परमात्मा को पाओ, ये सब थोथी बातें हैं। वास्तव जब प्रकट भगवान अपने धाम से यहाँ उतार लिए हैं और विविध जगह लीला कर रहे हैं और उस पर भी गीता का उपदेश किए हैं, ऐसे प्रभु को न मान करके क्या कल्पना करना है? तो मूढ़ता है ना। वास्तविक बात है कि कुंती महारानी मूढ़ नहीं है, कुंती महारानी अज्ञ नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण को इस रूप में नहीं जानने वाले लोग मूढ़ हैं और अज्ञ हैं, जो नहीं जानते। जब प्रकट कृष्ण है, प्रकट ईश्वर, न लक्ष्य से मूढ़ दृश्य नटो नाट्य धरोजत, न अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्तु। आश्चर्य की बात है, जो भगवान भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, सर्वत्र हैं। बाहर का मतलब कहाँ है? बाहर पुरी में है, जो द्वारका में है, कुरुक्षेत्र में है, वृंदावन में, मंदिर मंदिर में भरे पड़े हैं, बाहर सब जगह जगन्नाथपुरी में विराजते हैं, फिर भी है। लोगों के लिए अलग से लोग समझ नहीं पाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी कहे हैं कि ना हम प्रकाश सर्वस्य जोग माया समागत, मैं भी अपने को ढके रहता हूं। तो जीवों की कोई इच्छा नहीं है कृष्ण को जानने की, भगवान से प्रेम करने की और उनको जानने की किसी को लालसा नहीं है। अपने काम धंधा, ये करो, ये कमाओ, खाओ, ये करो, ये करो, इसी में लोग व्यस्त है। तो भगवान की भी इच्छा नहीं है कि वो दिखाई दे, इसलिए कहते मैं भी जोग माया से अपने को ढका रहता हूँ। ठीक है, तुम मुझे समझने का प्रयास नहीं करते हो, तो मैं भी नहीं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और गीता में दो चार जगह गाली भी देते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तन्मात्सत परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं कि मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, मुझे मनुष्य समझते हैं। अवजानंती मां मूढ़ा मानसिम तनवाज, मुझको मनुष्य समझते हैं। तो कहने ये तो देवकी का लड़का है, ये युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया, ये बचपन में बहुत लोभी था, माखन खाता रहता था, मट्ठा पीता रहता था। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं तो लड़कियों के साथ नाचता था, ये करता था, वो करता। मूर्ख लोग समझ ही नहीं पाते। और एक भक्त ने तो यहाँ तक लिखा है कि भगवान समझाना भी नहीं चाहते। कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके सामने अपने रहस्य तत्व का प्रकाशन नहीं करता हूँ। योग माया समावृत, मैं योग माया से अपने को ढके रहता हूँ और महामाया उनकी आंख पर पर्दा डाल दी। महामाया के द्वारा, माया के द्वारा उनकी आंख नष्ट है और योग माया के द्वारा मैं ढका हूँ। मतलब मैं भी ऐसी लीला करता हूँ कि लोग मुझको मनुष्य ही समझते हैं। वास्तव में इस तरह की लीला करते, जैसे मान लीजिए उन्होंने रुक्मिणी का हरण किया, तो रुक्मिणी का हरण करने में कुछ लोग कहते थे कृष्ण महाकामी है और स्त्री का अपहरण करते हुए घूम रहे हैं। पता होना चाहिए कि वो रुक्मिणी आत्महत्या करने जा रही थी, यदि कृष्ण नहीं अपहरण किए होते तो वह मर गई होती। भगवान उसके प्रेम की रक्षा के लिए उसका अपहरण किए थे। ऐसे नहीं कि कोई लंपट पुरुष हैं, स्त्री को भोगना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अगर वो लंपट नहीं होते तो 16108 विवाह कैसे करते? तो किसी लंपट व्यक्ति में सामर्थ है क्या 16000 विवाह करने की? जरा विचार कीजिए, 16000 विवाह किया भगवान ने, और सुखदेव गोस्वामी भागवत में 3-3 बार बोले हैं कि भगवान के मन को कोई भी स्त्री खींचने में समर्थ नहीं हुई, और जितनी भी संतान हुई थी सब अवरुद्ध सौरता, भगवान के वीर्य से किसी का उत्पादन नहीं हुआ था। आज तक भगवान श्री कृष्ण का वीर्य स्खलित हुआ ही नहीं, यहाँ तक शिव जी का स्खलित हो चुका और सब कई लोग, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है। 16108 स्त्रियों का पति अखंड ब्रह्मचारी है, कई जगह बात लिखी गई है। ये उनकी ईश्वरता है, ऐसा नहीं है कि वो स्त्री के प्रति लंपट है इसलिए यहां से वहां से यहां से वहां कई जगह से विवाह किए। वो बड़भागनी स्त्रियां श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, वो विवाह करते या नहीं करते, लेकिन वो तो समर्पण कर चुकी थी अपना जीवन श्री कृष्ण को, इसलिए श्री कृष्ण उनको स्वीकार किए, और चूंकि साक्षात भगवान है अतः प्रत्येक स्त्री के साथ एक एक रूप से रहते थे। 16,108 भवन बने हुए थे राजभवन, जिसमें सारी सामग्रियां थी एक एक स्त्री के लिए, और एक एक रूप से भगवान श्री कृष्ण सबके साथ रह रहे थे। यह है भगवान की भगवत्ता। लेकिन मूढ़ दृश्य माया जवनिका छन्नम अज्ञा धोक्षरम व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृश्य नटो नट धरो जत। पहले श्लोक में कह रहे हैं अलक्ष्यम और इसमें कह रहे न लक्ष्य से। अलक्ष्यम का अर्थ है दूसरे जीव माया से ग्रस्त हैं, देह को ही मैं मान रहे हैं, भगवान का या स्पिरिचुअल कुछ ज्ञान उनको नहीं है, तो वे कृष्ण को समझ नहीं सकते। और इधर भगवान भी न लक्ष्य से नहीं लक्षित होते हैं, क्योंकि माया जवनिका छन्नम, भगवान की जो माया शक्ति है योग माया, इसी को जवनिका कहा गया। जवनिका का अर्थ होता है तिरस्करणी शक्ति, जो भगवान को छिपा करके रखे। मूढ़ों की दृष्टि में भगवान हमेशा मनुष्य ही प्रतीत हो, उनका ऐश्वर्य सामने न आ पावे, इसको कहते हैं माया जवनिका छन्न। माया जवनिका से आच्छन्न पूरा पूरा ढके हुए। ऐसी भगवान लीलाएं करते हैं कि अपने आप बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, कभी कभी सोचने लगते हैं ये भगवान ये कृष्ण क्या है, ये तो लगता है बिल्कुल मायाबद्ध कोई मनुष्य है जो छोटी छोटी वस्तुओं के लिए रो रहा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण बचपन में चंद्रमा को खिलौने के रूप में पाने के लिए रोने लगे, तो उसमें कौन सोचेगा कि ये भगवान है जो फल खाने के लिए दौड़ता है। और कई प्रकार के काम हैं, राजनीति के दंगल में भगवान थे, हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को राजा बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, और कई लीलाएं किए, ग्वाल बालों के साथ खाना नाचना दूध दही पीना छीनना चोरी करना, इससे समझ में नहीं आता। इसको कहते हैं माया जवनिका आच्छन्न। माया जवनिका माया योग माया सा एव जवनिका तिरस्करणी शक्ति तिरस्करणी रूपा तया आच्छन्न महिमानं जस्यतम। भगवान की महिमा को छिपा करके रखी है माया, भगवान स्वयं ही चाहते हैं कि न कोई जाने। तो जो स्वयं ही माया से अपने को आच्छन्न रखे हैं विविध लीलाओं द्वारा आपको, और जो इंद्रियों से परे हैं अधोक्षर और अव्यय, आप किसी भी देश और किसी भी काल के द्वारा परिच्छिन्न नहीं है। संस्कृत में परिच्छिन्न का अर्थ होता है सीमा। भगवान श्री कृष्ण सभी काल में हैं, अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, इसको कहते हैं सर्व काल व्यापी और सर्व देश व्यापी। वो गोलोक में हैं, वैकुंठ में हैं, वो स्वर्ग में हैं, पृथ्वी पर हैं, वो पाताल में हैं, एक एक प्राणियों के हृदय में हैं, एक एक एटम के अंदर हैं। अंडांत रस्थ परमाणु चयांत रस्थम गोविंद माध पुरुषम तमहम भजामि। भगवान श्री कृष्ण एक एक एटम के भीतर है और इसी रूप में, इसी श्री कृष्ण रूप में लीला विलासी रूप में है, अपने परिकरों के साथ है और अनादि काल सभी देश में है। श्रील जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि अपरिच्छिन्न शब्द बता रहा है सर्व देश काल व्यापिनम, सभी देश में और सभी काल में है। ऐसा कोई नहीं है, कोई देवता कुछ काल के लिए अधिकार में रहते हैं, अधिकृत पद पर रहते हैं, इसके बाद छोड़ना पड़ता है, और कोई एक स्थान में रहता है, लेकिन श्री कृष्ण सब स्थान में सभी देश में सभी काल में। और की जो सत्ता है अवस्था है वो देश काल द्वारा बाधित है। आप कहीं फार्म भरिए कुछ भी कीजिए तो आपको लिखना पड़ता है कि आप कहाँ रहते हैं, अपने आईडी में लिखना पड़ता है कि हम यहाँ रहते हैं यहाँ रहते हैं, तब पासपोर्ट बनता है ना। अगर कोई लिख दे कि हम सर्वव्यापी हैं तो ठीक है, तो सर्वव्यापी हो तो अमेरिका में हो ही, अब जाने की क्या जरूरत है जो सर्वव्यापक देश लिखना पड़ता है स्थान के, हम यहां रहते हैं, यहां रहते हैं, यहां रहते हैं, यहां रहते हैं, और जन्म कब हुआ ये भी लिखना होता है, कितने वर्ष के हुए, और बाद में मरने के बाद दूसरे लोग लिखेंगे एक्सपायरी डेट, कब खत्म हो गए, इसको काल द्वारा सीमित कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति काल के अधीन है, जन्म और मृत्यु के बीच में वह स्थिति है, और वो भी कोई वास्तविक स्थिति नहीं है। जन्म के समय ज्ञान कैसा रहता है, शरीर कैसा रहता है, और युवा अवस्था में कैसा होता है, इसके बाद वृद्ध होना पड़ता है। 50 या 100 वर्ष के अंदर ही कितनी लीलाएं बदल जाती हैं जीव की लीला नहीं कहेंगे, कितनी अवस्था बदलती है, और इसके बाद मर जाना पड़ता है। तो इसको कहते हैं वो सभी काल में नहीं है, कुछ काल में है, और सभी देश में नहीं है। कुंती महारानी ने स्पष्ट देखा, समझा कि ये द्वारका जाने के लिए रथ पर भी बैठे हैं, और इसके साथ साथ उत्तरा के गर्भ में भी गए, अपने योग बल से अति सूक्ष्म बन करके उत्तरा के गर्भ में गए, तो उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए और रथ पर भी बैठे रहे। तो कोई आश्चर्य नहीं, वो तो सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थित, सभी जीवों के भीतर और बाहर श्री कृष्ण रहते हैं। तो माया जवनिका छन्नम अज्ञा धोक्षजम अव्ययम, अव्ययम का अर्थ श्रीपाद जीव गोस्वामी करते हैं अपरिच्छिन्नम, श्रीधर स्वामी जी भी ने अर्थ किया अपरिच्छिन्नम, इसकी व्याख्या जीव गोस्वामी जी करते हैं सर्व काल देश व्यापिनम, सभी देश में है, सभी काल में है श्री कृष्ण। ऐसा नहीं कि अब श्री कृष्ण लीला किए और पहले लीला के अब नहीं है, जिस रूप में वे पृथ्वी पर प्रकट थे उसी रूप में वे आज भी हैं और सर्वत्र है। ऐसा नहीं केवल गोलोक में है, सब जगह वे है। तो न लक्ष्य से मूढ़ दृश्य नटो नाट्य धरो जथा, कुंती महारानी कहती हैं कि जब कोई व्यक्ति अभिनेता नाचने वाला रंगमंच पर जब नाचता है तो नृत्य गीत के अनुसार नृत्य प्रस्तुत करता है, तो कभी कभी चंद्रमा का भाव बताता है, कमल का भाव बताता है, अनेक प्रकार के, लेकिन जो संगीत शास्त्र से अनभिज्ञ व्यक्ति है वो नाटक करने वाले व्यक्ति के नृत्य गति आदि को नहीं समझ पाता है। ये नाचने वाला क्या कर रहा है, क्या भाव बता रहा है, जो संगीत को नहीं जानता है वो नहीं समझ पाता है, वो केवल देखता है एक नाच रहा है, लेकिन क्या क्या भाव बता रहा है कुछ भी नहीं जान पाता। तो इस तरह से श्री कृष्ण न लक्ष्य से, श्री कृष्ण का अभिप्राय जल्दी समझ में नहीं आता है, कोई लीला ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे इनका क्या आशय है, नहीं समझ में आते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण के विषय में अनेक प्रकार की बात लोग बोला करते हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे है, ऐसे है। जैसे देखिए प्रकट लीला, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं पांडवों के पालन में आप तत्पर हैं, कुंती महारानी कह रही हैं पांडवों के पालन में आप तत्पर हैं, सब तरह से बहुत स्नेह है, प्रेम है, फिर भी अश्वत्थामा के हृदय में, अश्वत्थामा आदि के हृदय में प्रेरणा करके पांडवों के वध के लिए शस्त्र ग्रहण कराते ही रहते हैं। ये अद्भुत लीला है, सबके हृदय में है, सबके अंतर्जामी है, मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, तो वे सबके हृदय में है, तो अश्वत्थामा के भी हृदय में है, दुशासन के भी हृदय में है, दुर्योधन के हृदय में है, तो पांडव की रक्षा करने में तत्पर है, फिर भी अश्वत्थामा आदि को प्रेरित करके अस्त्र ग्रहण आदि करवा ही देते हैं, और इधर रक्षा भी करते हैं, सुदर्शन चक्र से रक्षा भी करते हैं, परंतु अश्वत्थामा आदि के हृदय में रोक नहीं पाते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि पांडवों के वध के लिए ब्रह्मास्त्र चलाओ। तो अश्वत्थामा के हृदय में ऐसे प्रेरणा देते हैं और इधर रक्षा करते हैं। आपकी लीला समझ में नहीं आता, आपका अभिप्राय नहीं समझ में आता है कि आप क्यों ऐसा करते हैं। अच्छा, और इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में आपने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, बिना अस्त्र ग्रहण किए ही सहायता करूंगा, लेकिन फिर भी आपने अस्त्र ग्रहण कर लिया, आप अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह नहीं किए। इसमें तो स्पष्ट कारण है कि भीष्म की प्रतिज्ञा को भगवान सत्य करना चाहते थे। तो कुंती महारानी कहते हैं अद्भुत आपकी लीला है, सुभद्रा और द्रौपदी से आप अति स्नेह करते हैं, फिर भी उनके पुत्रों की रक्षा आप नहीं किए। अद्भुत लीला है भगवान की, इधर इतना स्नेह करना परंतु उनके पुत्र की रक्षा नहीं करनी। वे चाहते तो जैसे परीक्षित की रक्षा कर लिए, वैसे अभिमन्यु की रक्षा कर लिए होते, या द्रौपदी के पुत्रों को भी बचा लिए होते, पर नहीं किए। इस प्रकार से और आप इस जगत में अवतार लिए हैं परित्राणा या साधु नाम, साधुओं की रक्षा के लिए, शिष्ट के पालन में आप लगे हैं, परंतु शिष्ट शिरोमणि सज्जन शिरोमणि भीष्म आदि का आप संहार करा रहे हैं। सज्जनों के पालन के लिए अवतार लिए और भीष्म पितामह का संहार करवा रहे हैं। यहां तक कि अर्जुन को प्रेरित किए कि अर्जुन मारो मारो मारो, ये टाइम है मारो, नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा, ऐसा वो कह रहे थे। तो अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, आप अस्त्र रखिए रखिए रखिए, अस्त्र आपकी बेइज्जती होगी दुनिया में, मैं मार दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो भगवान सज्जनों की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं, पर फिर भी भीष्म पितामह आदि महान सज्जनों का घात करवा रहे, मरवा रहे। तो इस प्रकार की लीला का अभिप्राय नहीं समझ में आता है प्रभु, इसीलिए कुंती महारानी कहते हैं अलक्ष्यम यानी न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो जत। नाटक करने वाले नाचने वाले व्यक्ति के गति को तो देखा जाता है, लेकिन किस अभिप्राय से वो क्या कर रहा है, क्या भाव बता रहा है, ये नहीं जाना जा सकता। इस तरह से आपकी लीला का मर्म समझ में नहीं आता है। मैं तो भक्ति योग से अनभिज्ञ हूं, अज्ञा मैं अज्ञ हूं और मूढ़ दृष्टि। तब भगवान श्री कृष्ण चुपचाप रह रहे हैं, इसके बाद वो कहते हैं तथा परमहंसाना मुनीना ममलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रिय। कुंती महारानी कहती हैं प्रभु आपको ईश्वर के रूप में, प्रकृति के नियंता के रूप में, या अधोक्षक के रूप में, सर्वकाल देश व्यापी के रूप में कौन जान सकते हैं। तथा परमहंसाना मुनीना अमलात्मना, जो परम हंस है, जो आत्म अनात्म के विवेकी हैं, क्या स्पिरिचुअल है क्या मैटेरियल है, मैटेरियल को छोड़कर के जो स्पिरिचुअल लाइफ में है उनको परमहंस कहते हैं। तो परमहंस लोग आपको समझ सकते हैं, और मननशील जो हायर विषय का मनन करते हैं वे आपको समझ सकते हैं, और जिनका मन अमल है, अमलात्मना निर्मल है, जो राग द्वेष आदि से शून्य है, ऐसे महापुरुष आपको समझ सकते हैं। कथम पश्येम हि स्त्रिय, हम स्त्रियां भला आपको कैसे जान सकती हैं। लेकिन कुंती महारानी के मुख से ये रहस्य बहुत बारीक रूप से प्रकट हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ये सब लीलाएं क्यों करते हैं, क्यों अवतार लेकर के विविध लीला करते हैं, गोवर्धन धारण की लीला या गीता वक कहने की लीला, अपने मित्र का रथ हाँकते हैं यशोदा जी से इतना प्रेम करते हैं, या वसुदेव जी से, नंद महाराज से, क्यों करते हैं सब लीला। कुंती महारानी कहती हैं ये परमहंसों को, मुनियों को और निर्मल मन वाले महान पुरुषों के जीवन में अपने प्रति प्रेम पैदा करने के लिए आप करते हैं। भक्ति योग विधान अर्थ, भक्ति योग उत्पन्न करने के लिए सब लीलाएं आप करते हैं। जब बड़े बड़े मुनीन्द्र आत्मा राम गण या परमहंस अमलात्मा मुनि गण आपकी लीलाओं को देखते हैं सुनते हैं तो वे लोग आपके भक्त हो जाते हैं। तो वास्तव में भक्ति योग का प्रचार करने के लिए, उनको भक्त बनाने के लिए सब आप लीलाएं करते हैं, यही रहस्य है। लेकिन ये कह करके कहते हैं फिर हम स्त्रियां भला कैसे इसको जान सकते हैं, अब केवे सब लीलाएं करते हैं। पहला विशेषण दे रहे परमहंसा नाम तथा, परमहंसों को भक्त बनाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इतनी मधुर हैं, खास करके भक्तों से प्रेम करने की लीला, जैसे अर्जुन के से उन्होंने प्रेम किया, इस प्रकार की लीलाओं को और उनके रूप गुण को सुन करके परमहंस मुनिजन सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के लिए दीवाना हो जाते हैं, कृष्ण के भक्त हो जाते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी। यदि भगवान इस प्रकार की लीला वृंदावन में नहीं किए होते, गोचारण की लीला, बंसीवादन की लीला, तो सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण के भक्त नहीं हो पाए होते। लीला सुन करके भक्त हो गए। परमहंसों में सबसे श्रेष्ठ परमहंस सुखदेव गोस्वामी है। और ऐसे लोग मुनि होते हैं। मुनि का अर्थ होता है मननशील, जो भगवान के विशेषताओं का मनन करे, उनके रूप गुण लीला आदि को मन में सोचे, तो उसको मुनि कहते हैं। मुनि का अर्थ ये नहीं है कि अपने दुकान में बैठ करके पैसा गिने और मनन करे, आज इतना मिला, ये हुआ, मनन का ये मतलब नहीं है। शुभ है आश्रय का मनन करना, भगवान का मनन करना। वैसे मनन तो सब करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, लेकिन भगवान के रूप में त्रिभंग ललित रूप, बंसी वादन, या अर्जुन के सारथ्य रूप का, सारथी रूप का, या जैसे तैसे कालिए के फण पर नृत्य करते समय, या गोवर्धन धारण किए हुए, गोचारण किए हुए, दवानल पान करते हुए, इन सब लीलाओं का जो मनन करता है, तो उसको मुनि कहते हैं। तो मुनियों को और अमल आत्मा, जिनके आत्मा में मन में मल नहीं है, उनको अमलात्मा कहते हैं। तथा परमहंसा नाम, मुनि नाम, अमल आत्मा नाम। मल क्या है मन का? मन में मल है किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष रखना, विषयों की लालसा, काम, लोभ आदि मल है। जिन महान पुरुषों का चित्त अमल आत्मा है, अमल है, मल रहित है, उन लोगों के हृदय में अपने प्रेम को भरने के लिए, अपनी भक्ति देने के लिए आप सभी लीलाएं करते हैं। लेकिन भला हम स्त्रियां इसको कैसे जान सकती? ये कुंती महारानी का सहज दैन है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने जीवन में दैन में आना ये बहुत बड़ा गुण है। कुंती महारानी कृष्ण के सारे रहस्यों का उद्घाटन करके भी कहते हैं कि भला हम कैसे जान सकते हैं, हम स्त्रियां कैसे जान सकती हैं। लोक में देखा जाता है कि स्त्रियों में श्रद्धा अधिक होती है, और यही कारण है कि कहीं पर कोई आध्यात्मिक या धार्मिक कोई गोष्ठी होती है तो उसमें स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है, देखा गया है। सहज श्रद्धा होते हैं। पुरुषों में क्या है? पुरुषों में बहुत ज्यादा दार्शनिक मीमांसा करना, ये अच्छा, ये बुरा, ये बुरा, वो बहुत फंस जाते हैं। जितने भी उटपटांग मार्ग प्रचलित हैं दुनिया में, भक्ति से विरुद्ध है, ये पंथ वो पंथ, सब उसके संस्थापक सब पुरुष रहे हैं, और उसमें से अधिकांश तो भगवान होकर के मर गए, भगवान थे, इसके बाद मर गए भगवान। आज भी कम से कम एक दर्जन भगवान जीवित होंगे जगह जगह, यह भगवान, वह भगवान, वह भगवान, लेकिन भगवान की जो सत्ता है वह स्थिति हो काल और देश द्वारा बाधित, कुछ काल में रहे, कुछ देश में रहे, और इसके बाद समाप्त हो गए। लेकिन श्री कृष्ण वास्तविक भगवान है, ये सब थर्ड क्लास के नकली भगवान नहीं है। और जब जन्म हुआ तब कोई पता नहीं था, कुछ काल के बाद अगर 200-400 चेला बना लिए, बस भगवान हो गए उसी दिन, क्योंकि चेला लोग सर्टिफिकेट देते हैं, वो लोग सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ अब आप भगवान हो गए। ये दुनिया में प्रचलित, तो श्री कृष्ण ऐसे सस्ते और थर्ड क्लास के ईश्वर नहीं है, वास्तव में वास्तविक ईश्वर है भगवान। और इस जगत में इतनी मधुर लीला करते हैं, ये राग द्वेष हीन और सार असार को, आत्मा और अनात्मा को जानने वाले और मननशील विद्वानों को भक्त बनाने के लिए ऐसी लीला करते हैं। ये भगवान की लीला सुन करके, उनको देख करके, उनके चरण की सुगंध सुन करके, कथा सुन करके लोग भक्त हो जाते हैं। यदि भगवान इस जगत में अवतार नहीं लिए होते, सब लीलाएं नहीं किए होते, तो क्या सुनते हम, क्या सुनते और कैसे भगवान में चित्त लगता है। तो इस तरह से अपने सौंदर्य को, अपनी महिमा को, अपने भक्त परवशता को, भक्त वात्सल्य को भगवान प्रकट किए इस जगत में, और अपनी करुणा को, जिससे अपनी कृपा को उन्होंने प्रकट किया, पुतना का वध करके तुरंत उसको वैकुंठ दिया, गोलोक दिया, इसमें कृपा प्रकट है। भगवान अतिशय कृपालु हैं और विशेष करके भक्तों से बहुत स्नेह करते हैं। इसके साथ ही में जगन्नाथ हैं, सारे जगत के जीवों से उनका स्नेह है, सबका पालन करते हैं, सबका पोषण करते हैं। और ये लीला अवतार ग्रहण करके भगवान ये सब दिखाते हैं, तब भगवान के प्रति बड़े बड़े लोग आकृष्ट होते हैं, और नहीं तो बस अलख निरंजन जगदीश परमात्मा ये सब अटकलबाजी करते रहते हैं, और इसी में मर जाते हैं। कुछ ज्ञान होता नहीं, कुछ भी वास्तव में ज्ञान नहीं होता। भले वो कोई अध्यात्मवाद का नाटक कोई करे, लेकिन कोई जीवन में भगवान का अनुभव नहीं हो पाता है। भगवान मन में भी नहीं आते हैं, फिर भगवान को गलवाही देना, भगवान को चामर डुलाना, ये सब कहाँ सुलभ हो सकता है, या भगवान से रथ हाँकवाना। ब्रज में तो भगवान नंद बाबा के जूता को भी उठा करके लाते हैं, जूता लाते हैं, नंद बाबा को पहनाते हैं, पीढ़ा लाते हैं खाने के लिए, सब भागवत में लिखा हुआ है। भगवान इतना सुलभ है, कोई लड़का भी ब्रज में उनको गलवाही दे सकता है, खेल सकता है, खा सकता है, गोपियां उनको नचा सकती हैं, छाछ पर झूला झूलते हैं, साथ में घूमते हैं गाय चराने के लिए, रास करते हैं, इतना सुलभ है। और ऐसे सुलभ ईश्वर को ये कह देना, नहीं ईश्वर वो है जिसको कोई जान नहीं सकता, उसको कोई देख नहीं सकता। ये लोग कहते हैं ईश्वर की परिभाषा, ईश्वर कौन है जिसको कोई जान ही नहीं सकता है, यही ज्ञान दे रहे, यही बताए कि उसको कोई जान नहीं सकता है। क्या यही ईश्वर का ज्ञान है, उसको कोई जान ही नहीं सकता है? तो जान ही नहीं सकता तो है, जान ही नहीं सकता तो है या नहीं है इसका प्रमाण? कोई नहीं जान सकता है तो तुम भी नहीं जानते हो ना। तो बोलने वाला कह रहा है कि हम नहीं जान सकते, तुम नहीं जान सकते, तो इस प्रवचन का मतलब क्या हुआ? इसको बकवाद कहते हैं। बकवाद, बक जो ब ब करोती सब बक, बगुले को बक कहा जाता है। बगुले जब पेड़ पर बैठते हैं तो बस एक ही शब्द बोलते हैं, ब ब ब। इस तरह से जो बोले बिना मतलब, अनन्वय, जिसका कोई अन्वय नहीं, कोई अर्थ नहीं, तो इसको बकवाद कहते हैं, इसको बकवास कहते हैं। बकवाद, जरा विचार कीजिए, कोई कहे कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसको मन में भी नहीं सोचा जा सकता है, अचिंत है, तो फिर ईश्वर है या नहीं है कैसे जाना जा सकता, प्रमाण क्या है? तो एक प्रकार से भगवान को न मानो, यही प्रचार है संसार में, और मानना है तो गुरु को मानो, खत्म हो गया है, क्योंकि गुरु प्रकट ईश्वर है, और भगवान तो निराकार हो, आएगा कि नहीं आएगा, अरे तो प्रकट है, ठगने वाला भगवान आ गया है, ये तो प्रकट है ना, यही चल रहा है दुनिया में। तो इन सब रहस्यों का उद्घाटन कुंती महारानी कर रहे हैं कि वास्तव में आप परमेश्वर हैं, आप पर ब्रह्म हैं, आप अधोक्षर हैं, अव्यय हैं, पर हम स्त्रियां कैसे जान सकती हैं, आपको तो परमहंस जन, मुनिजन और अमलात्मा महान पुरुष ही जान सकते हैं, और उनके हृदय में भक्ति संचार करने के लिए ही आप ये सब लीलाएं करते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए। अब वे कहते हैं कि इसीलिए मैं तो आपकी भक्ति के योग्य नहीं हूँ, मुझे भक्ति करने की कोई योग्यता नहीं है, अतः हे प्रभु मैं केवल आपको प्रणाम कर सकती हूँ, अतः बार बार प्रणाम कर रही हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रत्येक चतुर्थी विभक्ति के बाद नमः शब्द लगेगा। कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, देवकी नंदनाय नमः, नंद गोप कुमाराय नमः, गोविंदाय नमो नमः नमः नमः। ये केवल नमस्कार कर रहे हैं। और वास्तव में भगवान की जितनी भी भक्तियां हैं, सबसे आसान भक्ति है प्रणाम करना। ऐसे उससे भी आसान है जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कुंती महारानी भगवान का नाम ले रही हैं और प्रणाम कर रही हैं। सबसे पहले प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु मैं भक्ति योग से अनभिज्ञा हूँ, मेरी बुद्धि नहीं है आपको समझने की, अतः मैं तो केवल आपको प्रणाम कर रही हूँ। हे कृष्ण आपको प्रणाम है। कृष्णाय, आप श्री कृष्ण नामक पर ब्रह्म हैं। उपनिषद में लिखा गया है कि पर ब्रह्म को ही कृष्ण कहते हैं, उनका एक नाम है। ये कहा गया है कि कृषि भूवाचक शब्द रचन निर्वृत्ति वाचक तयोराक्यम पर ब्रह्म कृष्ण इत्यविधीयते। कृष का अर्थ होता है आधार और र का अर्थ है आनंद। जो आनंद के आधार है, निधान है, ऐसे परब्रह्म को कृष्ण कहा जाता है। ऑल अट्रैक्टिव, श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद किए, परम आकर्षक। इस संसार में कौन वस्तु सबसे ज्यादा आकर्षण का विषय है? आनंद। प्रत्येक व्यक्ति आनंद चाहता है। श्री कृष्ण नख से सिख तक घनीभूत आनंद है, इसीलिए उनको कृष्ण कहा जाता है। तो हे परब्रह्म, हे सर्व आनंद के निधान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो भगवान के इस प्रिय नाम को सबसे पहले रख रही हैं। भगवान के जितने भी नाम हैं सब में सिरमौर है या कृष्ण, कृष्ण नाम। अमेरिका में जब श्रील प्रभुपाद जी ने यह अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत की स्थापना करना चाहा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस, तो उनके कुछ शिष्यों ने और उनके कुछ मित्रों ने कहा कि स्वामी जी बेटर होता यदि आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शसनेस कहते तो लोग ज्यादा ग्रहण करते इसे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शसनेस। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, इस सोसाइटी का नाम रखने में भी भगवान का नाम आएगा कृष्ण, इसलिए कृष्ण ही रखा जाएगा। लोग कहे कि कृष्ण को कौन मानेगा, गॉड लिखेंगे तो कुछ लोग अट्रैक्ट होंगे। प्रभुपाद जी ने कहा कोई हो या ना हो ये कृष्ण ही शब्द रहेगा, इतना प्रिय नाम है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये कृष्ण नाम ही रखा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस। और फिर भी भगवान की कृपा से यह सोसाइटी पूरे संसार में फैल चुकी है, बहुत प्रिय है। कुंती महारानी के मुख कमल से यह कृष्ण शब्द निकल रहा है, कितना अच्छा है। कृष्णाय नमः, हे कृष्ण, हे परब्रह्म, हे समस्त आनंद और आकर्षण के स्रोत, मैं आपको नमस्कार करते हूँ। और कृष्ण की ये महिमा कह करके अब संबंध परक भी बात भूल नहीं रही है। ऐसा नहीं कि अपने संबंध को भूल गई, क्योंकि वो वास्तविक संबंध है बुआ का, भगवान का, भतीजे का, तो वो जा नहीं सकता है। तो अब संबंध परक संबोधन कर रहे हैं। वासुदेवाय, वासुदेव का अर्थ है वसुदेव के पुत्र। हे हमारे भाई के पुत्र, आपको नमस्कार। ये भतीजे की बुद्धि से नमस्कार नहीं कर रही है, परंतु वो भतीजा का भाव मन में तो है ही निरंतर, इसलिए वो आ रहा है। पर नमस्कार शब्द वो ऐश्वर्य की भावना से कर रही है। कि आप वास्तव में ईश्वर हैं, आप भगवान हैं, लेकिन आप हमारे भाई के पुत्र बने हुए हैं, आपको नमस्कार करते, आप हमारे भैया के पुत्र के रूप में लीला कर रहे हैं, तो एक प्रकार से अपना संबंध जोड़ रही है बहुत निकट का, कि आप हमारे भाई के पुत्र बने हुए हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, पर वास्तव में आप हमारे भतीजा नहीं, आप तो भगवान हैं, ये कहने का आशय है। इतना ऐश्वर्य छाया है मन में, कृष्णाय वासुदेवाय, हमारे भैया वसुदेव जी कितने भाग्यशाली हैं, कितने महान हैं कि परब्रह्म परमात्मा उनके पुत्र बने हुए हैं। दुनिया आगे उनको वसुदेव कहेगी, जैसे हम लोग वसुदेव कहते, वसुदेव का मतलब वसुदेव जी का पुत्र है, जैसे भरत के पुत्र को भारत कहते हैं, इस तरह से वसुदेव जी के पुत्र को वासुदेव कहते हैं। जितने भी पुरुष हैं इस संसार में, सबसे भाग्यशाली हमारे भाई हैं, जिनके पुत्र के रूप में आप जन्म लिए हैं, मैं आपको प्रणाम करते हैं। और अपने भाई से भी कहते, मेरे भाई से भी अधिक भाग्यशाली, अधिक सौभाग्यशालिनी देवकी है, जिसके गर्भवास को आपने स्वीकार किया, जिसके उदर में आप पुत्र बन करके आए, अहो समस्त महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ मेरी भाभी देवकी है, जिसके पुत्र रत्न रूप में आप प्राप्त हुए हैं, अहो धन्य है। बहुत सी माताएं हैं इस जगत में, लेकिन जो देवकी ने सौभाग्य प्राप्त किया आपको अपने कोख में धारण करके, वो धन्य है। तो देवकी नंद नायच, देवकी को आनंद देने वाले देवकी के पुत्र आपको नमस्कार है। और देवकी से भी अधिक भाग्य नंद महाराज का है, जिनके गोकुल में आप अपनी बाल लीला किए, वत्सल्य रस दिए वसुदेव नंद बाबा को, तो नंद बाबा अतिशय भाग्यशाली है। समस्त बाल लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में किया नंद बाबा के देख रेख में, उनके प्रेम में। और नंद गोप कुमार आय गोविंद आय नमना, बचपन में कुमारावस्था में आपने इस तरह नंद बाबा को ब्रजवासियों को सुख दिया, और किशोर अवस्था में गोविंद आय आपने अक्षय अनंत सुख दिया श्री गोपी जनों को। जब आपका गोविंद नाम पड़ा, आपने गोवर्धन धारण किया, ब्रज की रक्षा किया, और आप गोपियों के परम प्रिय प्रियतम बनकर लीला किए, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। और माँ यशोदा के विषय में तो स्पेशल एक श्लोक कहा है, बाद में आएगा, गोप्या ददे तो ही कृता का सिद्धा मुतावत। तो इस संसार में सौभाग्यवती स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ श्री यशोदा है, जिनको आपने बाल लीला का अक्षय सुख दिया, जिनका स्तनपान किया, जिनके गोद में सोए, उसमें लाड़ लड़ाया, इस तरह से यशोदा का बहुत बड़ा सौभाग्य। इस प्रकार से श्री कृष्ण का वर्णन उनके भक्तों के साथ जोड़ करके कर रही है, भगवान को ये पसंद है। यदि श्री कृष्ण को कोई कहता है कि श्री कृष्ण परमात्मा है, जगदीश्वर है, ये जगन्नाथ है, और बड़ी बड़ी उपाधि, तो भगवान इतना प्रसन्न नहीं होते हैं। जब किसी भक्त से संबंध जोड़ करके उनको पुकारा जाता है तो बहुत आनंद लेते हैं। जैसे पार्थ सारथी, पार्थ का अर्थ प्रथा के पुत्र अर्जुन, अर्जुन के सारथी, या देवकी नंदन, देवकी का पुत्र वासुदेव, वसुदेव जी के पुत्र यशोदा नंदन, किसी भक्त के साथ संबंध जोड़ करके इनका नाम जो रखा जाता है वो उनको बहुत प्रिय लगता है। और ये प्रिय नहीं है केवल उनको जगदीश्वर कहना या कहना ओम जय जगदीश हरे, केवल करना इसे बेटर है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे राम। भगवान तो जगदीश्वर है ही, इसमें संदेह थोड़े हैं। प्रेम इसको कहते हैं, भगवान से सहज स्नेह करना, उनको देने की भावना रखना, भगवान को हमें देना है, सुखी करना है, इसको प्रेम कहते हैं। यह प्रेम नहीं है कि भगवान से विनय करके और कहना कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, दुनिया भर का धन हमारे घर में दे दीजिए और हमारा कष्ट मिटा दीजिए, ओम जय जगदीश हरे हो गई आरती, यही प्रेम है। प्रेम तो देता है ना, वास्तविक प्रेम यशोदा जी का है, जो कृष्ण को खिलाने के लिए दही मथती हैं, कृष्ण को सुखी करने के लिए कई तरह से काम करती हैं। इस संसार में भगवान से प्रेम करने का ढंग ये है कि भगवान के अर्चा विग्रह की आराधना की जाए, उनको ड्रेस पहनाया जाए, उनकी आरती की जाए, खिलाया जाए, ये प्रेम है, इसको प्रेम कहते हैं। तो यहाँ पर श्रीमती कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण का वर्णन कर रही हैं, लेकिन इनके परिकरों के, इनके प्रेमियों के साथ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यह श्लोक बहुत प्रिय है वैष्णव समाज में। दो श्लोकों में श्री कुंती महारानी भगवान का गुण वर्णन कर रही कि आपके रहस्य को मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आप हमें बहुत सुखद और तापहारी प्रतीत हो रहे हैं। आप भक्तों का दुख दूर करते हैं और हमें बहुत सुखद लग, सुख देते हैं। तो इस श्लोक में सुखद तत्व का वर्णन है कि कृष्ण सुख देते हैं। किसको किसको सुख दे, देवकी को, वसुदेव जी को, नंद बाबा, नंद गोप को, गोपिकाओं को, गौओं को, सबको सुख देते हैं। और इसके बाद वाले श्लोक में श्री कृष्ण के तापहारी स्वरूप का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण सबका दुख हर लेते हैं। सुख देना एक अलग चीज है और दुख हरना भी एक अलग चीज है। किसी को बहुत अधिक बुखार है, कोई कष्ट है, तो उस कष्ट को हर लिया जाए तो इसको तापहारी कर्म कहेंगे। ताप हर लिए, दुख हर लिए, तो श्री कृष्ण दुख हर लेते हैं। इसी का वर्णन श्री कुंती महारानी अगले श्लोक में कर रही हैं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज अंग्रये। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं कि आप जैसे भी हैं कृष्ण, लेकिन आप हमारे नेत्रों को बहुत सुख दे रहे हैं और हमारे मन की जलन हर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के अंग का वर्णन कमल के रूपक से कर रहे हैं। पंकज, पंक से जिसका जन्म हो उसको पंकज कहते हैं। कमल पंक से जन्म लेता है, कीचड़ से जन्म लेता है, जल के भीतर जो मिट्टी का भींगा हुआ अंश रहता है उसको कीचड़ कहते हैं, पंक। और पंक ज, पंक जात जन्म जस्य तम पंकज, पंकज यहां से प्रारंभ कर रहे हैं, नाभि से, नाभि से चालू कर रहे हैं। नमः पंकज नाभाय। भक्त लोग जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम प्रायः चरण से चालू किया जाता है, चरण से चालू किया जाता है। लेकिन कुंती महारानी चूंकि भगवान के माँ के समान है, बुआ है, तो उन्होंने सोचा कि अगर चरण से प्रणाम करूंगे तो कृष्ण लज्जा में पड़ जाएंगे, क्या हो गया बुआ को, माँ एकाएक चरण छू करके प्रणाम करने लगे तो बुरा लगेगा, इसीलिए कुंती महारानी नाभि से चालू कर रहे हैं। नमः पंकज नाभाय, आपकी नाभि पंकज के समान है, बहुत सुंदर कमल के आकार में है, अथवा आपके नाभि से कमल कोष का जन्म हुआ, कमल जन्म लिया जिससे ब्रह्मा जी जन्म लिए, ये याद कर रहे हैं। आपके नाभि से लोकात्मक कमल जन्म लिया और उसी कमल से विश्व विधाता ब्रह्मा जी जन्म लिए, आप इतने महान हैं। तो नाभि को देख करके श्री कुंती महारानी याद कर रहे कि यही नाभि विश्व का जन्म स्थान है। इस संसार में भी देखा जाता है कि नाभि ही, पेट ही मनुष्य के जन्म का स्थान होता है, माँ के उदर से जन्म होता है। तो ये विश्व भी, पूरा विश्व चर अचर तीनों जगत, ये जन्म कहाँ से लिया है? भगवान के नाभि से। भगवान के नाभि से कमल, कमल से विश्व का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो कुंती महारानी भगवान की महिमा का स्मरण कर रही। और दूसरा इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण की नाभि कमल के समान सुंदर है, गंभीर है। नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भंवर छरिछिन। भगवान की नाभि का वर्णन आया है तो कहा गया जमुना जी में जैसे भंवर पड़ती है, जितनी सुंदर लगती है उससे भी अधिक सुंदर भगवान की नाभि लगती है। जमुना जी में बहुत ऐसे भंवर पड़ते हैं। नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भंवर छरिछिन। तो मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपकी नाभि पंकज के आकार की है, बहुत सुंदर, और आपके नाभि से इस विश्व का जन्म हुआ है। हे विश्व जनक, हे विश्व विधाता, आपको मैं प्रणाम कर रही हूँ। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने। और आप पंकज की माला पहने हैं, आपको नमस्कार है। लगता है उस समय भगवान कमल की माला पहने थे। नमः पंकज मालिने, पंकज की माला धारण किए हुए प्रभु मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। और इसका एक और अर्थ है, श्री कृष्ण के शरीर में सब जगह पंकज है, कमल है, पंकज की माला है। चरण में कमल का चिन्ह है, हाथ में कमल का चिन्ह है, उनकी आंखें कमल जैसी हैं, उनका मुख कमल जैसा है, सारा शरीर तो कमल जैसा ही। अतः कुंती महारानी कहती हैं कि आप तो पंकज की माला ही धारण किए, सर्वत्र पंकज ही पंकज। भगवान के अंग की उपमा किससे दी जाए? इस संसार में कमल से बढ़कर के सुंदर और कोई चीज नहीं है। कमल में शीतलता होती है, सुगंध होती है, सुंदरता होती है। यद्यपि भगवान के अंग कमल से कोटि कोटि गुना अधिक सुंदर हैं, सुगंधित हैं, लेकिन फिर भी वर्णन करने के लिए कोई आधार चाहिए। अतः भक्त लोग भगवान के मुख की, हाथ की, चरण की उपमा कमल से दे करके वर्णन करते हैं, कभी कभी चंद्रमा से। जैसे मुखारविंद अरविंद कमल, चरणारविंद करारविंद। एक गीत में बिलमंगल ठाकुर लिखे हैं कि करारविंदे न पदारविंद मुखारविंदे बिनवेशयंत। भगवान बाल मुकुंद बटपत्र पर शयन करते हुए करारविंद ने अपने हाथ से अपने पदा अंगूठे को लेकर के मुखारविंद में लगाते, अपने अंगूठे को चूसते रहते। ये भगवान की लीला है बाल मुकुंद की। तो उनका हाथ भी अरविंद, उनका चरण भी अरविंद और मुख भी अरविंद। अरविंद था पंकज। तो इस तरह श्री कृष्ण पंकज की माला धारण किए हैं, सब जगह पंकज ही पंकज है। और नमः पंकज नेत्राय, और इसके बाद दृष्टि ऊपर जाती है, आपकी आंखें कमल से भी अधिक सुंदर हैं, आप कितना सुंदर हैं, आपको मैं प्रणाम कर रहे हैं। ये सुंदरता की दृष्टि और है कि भगवान बहुत सुंदर है, उनके प्रति महिमा का भाव ही रख करके कह रहे हैं। नमः पंकज नेत्राय, आपके नेत्र अतिशय सुंदर, पंकज से भी अधिक सुंदर है, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। अंत में रहा नहीं गया, जब प्रणाम कर ही रही हैं तो नमस्ते पंकजांग्रह, आपके चरण कमल के समान सुंदर हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करूँ। इस तरह लास्ट में चरण में प्रणाम कर रही शालीनता की, और भगवान को कोई संकोच न हो इसके लिए प्रणाम कर रही, नाभि से चालू करके कंठ पर कमल मालिने और नेत्र, इसके बाद चरण। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राया नमस्ते पंकजांग्रये। इस तरह भगवान को देख देख कर प्रणाम करना चाहिए। एक बार नेत्र को देख कर प्रणाम, चरण को देख कर प्रणाम, माला को देख कर प्रणाम, नाभि को, कम से कम डीटी का दर्शन करते समय तो चार बार तो भगवान को प्रणाम करना ही चाहिए। ये शिक्षा भी है। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, कुंती महारानी की शिक्षा। तो यह केवल प्रार्थना ही नहीं है, वास्तव में श्रीमती कुंती के मुख से बहुत बड़ी शिक्षा दी जा रही है। भगवान की भक्ति ऐसे करनी चाहिए। तो इसमें ताप हारित्व स्वरूप का वर्णन किया गया है। कमल एक ऐसी वस्तु है जो किसी तप्त व्यक्ति के ताप को दूर करके शांति देता है। कमल के फूल को यदि आंखों से लगावे तो शीतलता मिलती है, छाती से लगावे शीतलता मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे सुंदर हैं, ऐसे सुखद हैं कि उनका कोई चिंतन करे, दर्शन करे तो उसके जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं, सारी जलन शांत हो जाती है। कुंती महारानी भगवान के इस सुखद और तापहारी स्वरूप का वर्णन करते हुए उन्हें बार बार नमस्कार कर रहे हैं, नमो नमः। नमो नमः ही विप्सा है संस्कृत में, इसको कहते हैं। दो बार कहने का मतलब अनेक बार समझ लेना चाहिए। नमो नमः, नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंद को नमस्कार। ये है भक्ति। कितनी सरल भक्ति है, भगवान को अपने सामने रख करके और बार बार प्रणाम करना बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आज के युग में तो इसे बहुत फायदा है कि भगवान को बार बार प्रणाम कोई करे तो उसको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा, अगर कई प्रणाम करे, है ना। नहीं तो ऐसे भारी शरीर रहता है और कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान को प्रणाम करने से यह भी फायदा है। भक्ति तो हुई ही, इसके साथ आसन और व्यायाम हो गया है। इसमें आनंद के साथ प्रणाम करना चाहिए, आनंद के साथ, सुख के साथ। प्रत्येक कर्म पद जो उसमें दिया गया है उसके बाद नमः नमः लगाना, नमः नमः लगाना, यह है भक्ति। तो श्री कुंती महाराज जी का दैन्य प्रकट हो रहा है कि मैं तो भक्ति के योग्य नहीं हूं, मैं तो केवल आपको प्रणाम भर कर सकती हूं, इतनी ही योग्यता है। इतनी महान स्त्री जिसे भगवान के बुआ पद को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, जो श्री कृष्ण को गोद में खिलाई थी, और जिस दिन श्री कृष्ण को उखल में बांधा गया गोकुल में, उस दिन कुंती अपने आंख से देखी थी इस लीला को। गई थी जसोदा के यहाँ, उसने आंख से देखा कि कृष्ण को बांधा जा रहा है और वो रो रहे हैं। माता जसोदा ने जम ही रस्सी उठाया, ठीक है पीटूंगी नहीं लेकिन अब पशु की तरह बांध कर रखूंगी, जम ही रस्सी लिया तेम ही कृष्ण आह करके रोने लगे और उनके आंखों से आंसू चुरा था, काजल को धो रहा था। श्री कृष्ण अपने एक हाथ से आंखों को पोछ रहे थे तो गाल पर काजल फैल गया। इस दृश्य को कुंती ने अपने आंखों से देखा है, इसीलिए इस स्तुति में उसको प्रस्तुत कर रही है। आगे वह श्लोक आएगा। कुंती कहती है कि कहां ब्रह्मास्त्र का समन करने वाला व्यक्ति साक्षात परब्रह्म भगवान आप, इस विश्व युद्ध में हमारे पुत्रों को आपने विजय दिलाया, इस प्रकार से आपकी महिमा। और ये दृश्य जब मैं याद करती हूं और गोकुल में दधि भांड फोड़ दिए थे आप, और उस समय माँ जसोदा आपको जब बांधने के लिए रस्सी उठाई, उस समय आपकी जो दशा थी, वास्तव में वो आप भय से बिल्कुल व्याकुल थे, भय हो गया था आपको। तो मैं तो जब वही याद करती हूँ और ये ईश्वर के रूप का स्मरण करती हूँ तो मेरा मन तो मुंह में पड़ जाता है कि क्या हो रहा है। अगर ऐसा होता कि आप नाटक करते तभी सांत्वना थी, लेकिन नाटक नहीं था, झरझर आंसू झर रहे थे, आप रो रहे थे, वास्तव में आप भयभीत थे। तो एक प्रश्न उठता है कि ये जन्म कर्म सत्य है क्या है? शास्त्र तो कहता है कि आप अजन्मा हैं, आपका जन्म नहीं होता है और आप कोई कर्म नहीं करते हैं। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि मैं करता हूँ कर्म और जन्म भी लेता हूँ, पर मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, जन्म कर्म चमे दिव्य। ये तो झूठा तो हो नहीं सकता है। भगवान जन्म भी लेते हैं और कर्म करते हैं, ये तो सत्य है। तो फिर शास्त्र उनको अजन्मा और अकर्मा क्यों कहता है? एक में से दोनों बात सत्य, दोनों में से केवल एक बात सत्य होगी। वास्तव में उनका जन्म नहीं होता है और कर्म नहीं करते, ये बात सत्य है। अथवा जन्म कर्म और जन्म लेते हैं कर्म करते हैं तो ये बात सत्य नहीं है, और ये सत्य है तो वो सत्य नहीं है, वो नहीं जन्म लेते हैं। लेकिन दोनों सत्य है, अजन्मा होते हुए भी वे जन्म ग्रहण करते हैं और अकर्मा होते हुए भी वे कर्म करते हैं। यही भगवान की विशेषता है। कुंती महारानी इसी तथ्य को पूरे स्तुति में प्रस्तुत करना चाहते हैं। अजन्मा ने जन्म लिया गोकुल में या मथुरा में, और अकर्मा ने जिसको कर्म बंधन कभी बांधता नहीं है, जिसे किसी भोग को प्राप्त करने की इच्छा नहीं, जो सब तरह से पूर्ण है, वह कर्म करता है। द्वारका निर्माण आदि कर्म, या युद्ध से पलायन का कर्म, या दधि का मटका फोड़ने का कर्म, या गोचारण करने का कर्म, गोवर्धन धारण का कर्म, कालिए के फण पर नृत्य करने का कर्म, अर्जुन का सारथी बनकर रथ हाँकने का कर्म, ये सब करते हैं। पर सारे कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, अतः वे एक प्रकार से कर्म नहीं भी करते हैं। पर ये भगवान के नित्य लीलाएं हैं तो करते ही हैं, परंतु कर्म फल से प्रभावित नहीं होते हैं, इनकी लीला है। इसीलिए भगवान अपने मुख से कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म सब दिव्य हैं, अन्य मनुष्य देवताओं जैसे नहीं है, अप्राकृत है। और भगवान यहाँ तक कहते हैं कि एवं योग इति तत्वतः, जो व्यक्ति जानता है कि मेरा जन्म मथुरा में और या अन्य अवतारों में भी मेरा जन्म दिव्य है और मेरे कर्म दिव्य है, इस बात को जानता है, वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जिसके जन्म और कर्म को जानने से ही दूसरे जीव कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, तो उनका जन्म कर्म मटेरियल कैसे हो सकता है? इस प्रकार कुंती महारानी भगवान के जन्म कर्म की प्रशंसा कर रही हैं और उसके स्वरूप को समझा रही हैं। देखिए भगवान के रूप का कितना क्लियर वर्णन आ रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, बाल लीला विशेष करके कई लीलाओं का वर्णन है, और उनके रूप का वर्णन, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। इसे भगवान के परम सुंदर रूप का वर्णन है। पहले श्लोक में संबंध का लीला का वर्णन है और दूसरे में इसमें नमः पंकज नाभाय में भगवान के सुंदर रूप का। यही है कृष्ण कथा वास्तव में। भगवान के रूप, भगवान की लीला, गुण, चरित्र, अवतार आदि की बात कहना सुनना। अतः कुंती महारानी की ये प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद जी 26 दिन प्रवचन किए थे इस अध्याय पर, और पुस्तक छपी हुई है टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, प्रभुपाद जी का लेक्चर छपा हुआ है। इतना महत्वपूर्ण, इतना आकर्षक है कि प्रभुपाद जी 26 दिन प्रवचन किए एक एक श्लोकों पर। अतः हम लोगों का भी एक सौभाग्य है कि हम लोग भगवान के इस धाम में महारानी कुंती के मुखारविंद से निकले हुए शब्दों का आस्वादन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ऐसी कृपा करें कि हम सबकी मति भगवान कृष्ण में लगे, उनसे प्रेम बढ़े और हम सुखी रहें। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।